नारायण 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 नारायण। राजोवाच यथैतामैश्वरी मायां दुष्तराम् अकृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यारभमाणानाम् दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत्पाकविपर्यासम् मिथुनीचारिणाम् नृणाम्। नित्यार्तितेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना ग्रहपत्याप्तपशुभिः का प्रीतिसाधितैश्चलैः। एवम् लोकम् परम् विद्यान् नश्वरम् कर्म निर्मिताम् सतुल्यातिशयध्वंसम् यथा मण्डलवर्तिना। वाह, भगवान की माया से हम लोगों को परिचित कराया। अब राजा को पता चल गया कि ये जो माया है ये ऐश्वरी माया है, ये एक अच्छा संस्कार है। माया के साथ ऐश्वरी लगा देने का मतलब ये ईश्वर की माया है। माया का कई अर्थ लोग लगाते हैं और वो सब ठीक है। एक माया का अर्थ है मां माने प्रमा ज्ञान। तो नियते अनेन प्रकर्षेण नियते अनेन इति प्रमा, उसी को माया कहते हैं। मां ज्ञाने या माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा परमात्मा को जाना जाए उसको माया कहते हैं। अब ये एक समझने की बात है। लोग कहते हैं माया से ईश्वर ढक जाता है, ठीक है, लेकिन आखिर ये माया न होए तो ईश्वर या ब्रह्म नाम की कोई चीजें हमको पता चलेगी? हमको ईश्वर बताने के लिए, परमात्मा बताने के लिए साधन क्या है? यही तो है कि जिसमें, जिसकी कृपा से या सत्ता से ये संसार है वो परमात्मा है। इसके अलावा और कोई उपाय है? अगर माया न हो तो हमको परमात्मा कैसे ज्ञात होगा? अगर माया न हो, ये शरीर न हो, परमात्मा दिखाई पड़ेगा? मन बुद्धि चित्त अहंकार न हो, परमात्मा दिखाई पड़ेगा? जागृत अवस्था न हो, हमको परमात्मा दिखाई पड़ेगा? परमात्मा के दिखाई पड़ने का और कोई साधन नहीं है माय डियर, सिवाय माया के। अगर कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। अरे विवेक करोगे तो काहे से करोगे, श्रवण करोगे तो कहां से करोगे, मनन करोगे तो कहां से करोगे, निधि ध्यासन करोगे तो कहां से करोगे? बिना माया के हो जाएगा ये? तो जिसकी कृपा से ये शरीर है, भले क्या है वो एक अलग चीज है, वो रस्सी है कि सांप है कि दरार है कि रबड़ का कोई टुकड़ा है, ये एक अलग चीज है। लेकिन कोई न कोई चीज है जिसकी सत्ता से ये सत्तावान दिखाई पड़ रहा है, तो इस सत्ता के प्रभाव के कारण कोई न कोई सत्तावान है, इसकी अनुभूति होती है। अगर रस्सी है तब तो सांप दिखाई पड़ रहा है, अगर रस्सी ही नहीं है तो सांप कहां से दिखेगा? बिना रस्सी के सांप दिख सकता है? ये शरीर की तुम चाहे जितनी निंदा करना चाहो कर लो, डट के करो, लेकिन बिना शरीर के कल्याण भी नहीं होने वाला है। कोई उपाय सत्संग करने का उपाय क्या है? शरीर। गुरु शक्ति का उपाय क्या है? शरीर। गुरु से श्रवण करने का उपाय क्या है? शरीर। मनन और निधिध्यासन करने का उपाय क्या है? यही शरीर। तो ये माया जिसके द्वारा अनुमान किया जाता है कि परमात्मा है, इसका नाम माया। जिसके या माने जिसके द्वारा, यया माने जिसके द्वारा, मां माने ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जिसके द्वारा हो उसको भी माया कहते हैं। अभी अपने अर्थ अर्थ लगाने की विद्या है। माया माने यह वनिकार करो, कहते पर्दा जो भगवान को ढक ले। अब ये आप इसको किस तरह से प्रयोग कर रहे हो इसके ऊपर है। अब अगर तुम सांप ही देखने लग गए तो रस्सी ढक जाएगी। तो इसी तरह से हमारे ऊपर है कि हम माया से परमात्मा को जानते हैं या परमात्मा को भूलते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो माया माने एक अच्छा अर्थ भी है, ऐश्वरी माया है माय डियर। भगवान की कोई चीज गंदी हो सकती है? संसार में कोई भी वस्तु गंदी है ही नहीं, कोई वस्तु गंदी नहीं। तुम कोई नाम बता दो गंदी से गंदी वस्तु का, अगर हम उसका अच्छा उपयोग न बता सके तो आप कह दो हमको। अरे माय डियर, फीसेस का भी उपयोग खाद बना करके और बढ़िया बढ़िया सब्जी और फ्रूट पैदा करने में हो जाता है। जहर से कितनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां बनती हैं माय डियर, सांप के जहर से। बड़ा महंगा होता सांप का जहर, सांप को पाला जाता है काहे के लिए, उसके जहर के लिए। तो इसलिए माय डियर, भगवान की सृष्टि में गंदी वस्तु कोई है ही नहीं, अपवित्र वस्तु कोई है ही नहीं, अशुद्ध वस्तु अनुपादे वस्तु कुछ है ही नहीं। ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उससे क्या देखते हैं। हम ईश्वर को ढक भी सकते हैं उसी से, और ईश्वर का अनुमान भी लगा। अगर माया न हो तो ईश्वर नाम की कोई चीज है ये पता कैसे चलेगा? न्याय वाले सबसे बड़े तार्किक हैं, वो हर चीज तर्क से, वेद को भी तर्क से सिद्ध करते हैं, इसलिए उनको तार्किक कहा जाता है। वो ईश्वर की सत्ता कैसे निर्णय करते हैं, उनका वही अनुमान है। चित्यंकुरादिकम कर्तजन्यम कार्यत्वाद घटाधिवत, जैसे घड़ा है, घड़ा बना हुआ ये प्रमाणित करता है कि इस घड़े को बनाने वाला कोई न कोई है। बिना किसी के हुए घड़ा अपने आप नहीं बन जाएगा। तो ये सृष्टि बनी है, क्षिति माने पृथ्वी, अंकुर माने ये वनस्पति इत्यादि, चित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम किसी न किसी कर्ता के द्वारा बनाए हुए हैं। जैसे घड़ा, घड़ा किसी के द्वारा बना, इसे सृष्टि किसी की बनाई हुई। फिर उसके बाद जब एक बात पता चल गई कि धरती और अंकुर आदि सृष्टि बिना ईश्वर के, किसी बिना कर्ता के नहीं बन सकती है, तो फिर यह सोचना पड़ता है घड़ा बनाने के लिए कारीगर चाहिए, उसकी इतनी स्किल चाहिए। तो कंप्यूटर बनाने की बुद्धि बनाने वाली, माने कंप्यूटर एक बुद्धि बनाती है सबसे बड़ी थी, उस बुद्धि को बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा ये। तो इससे उनकी बुद्धि इत्यादि का अनुमान किया जाता है। तो हमने ये बात इसलिए थोड़ा आग्रह करके कही कि कई लोग माया को बड़ी गाली देते हैं। गाली देने की जरूरत नहीं है, विवेक करने की जरूरत है। माया इस तंत्र शास्त्र में तो उसको माया को बड़ा उच्च स्थान दिया गया है, परमेश्वरी है यार, इसीलिए दे दिया ऐश्वरी माया। और क्या चाहिए तुमको, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। हम तंत्र मंत्र में कहा जाए भागवत से गुजारा करें, गुजारा क्यों करें, निर्णय करें। ऐश्वरी माया, ईश्वर की होने के कारण ऐश्वरी है, ईश्वर सदैव हमारे कल्याण के लिए करते हैं, इसलिए माया भी हमारे कल्याण के लिए है। बस ये समझ लो, ये पहले अपने दिमाग में भर लो कि ये माया हमको फंसाने के लिए नहीं है, हम फंस जाएं वो एक अलग बात है, माया हमारे तरने के लिए है। ये आग्रह पूर्वक अपने मन में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि माया के प्रति द्वेष बुद्धि रखने से उसकी निवृत्ति करने की बुद्धि के कारण कई बार हमारी बुद्धि में नाना प्रकार के विकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए सावधानी पूर्वक हमारे राजा जनक के वचनों को समझ लेना चाहिए। ऐश्वरी माया, ये ईश्वर की माया, लेकिन अगर हम माया में लटक गए और माया पति को न देख पाए तो वो गड़बड़ है। इसलिए अधिकतर लोग बस वो हार में भूल जाते हैं, हार बनाने वाले की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है ज्यादातर लोग। क्या बात है, और वास्तव में कई लोग पैसा बढ़िया डिजाइन बनाते हैं। अरे हमारे श्री जी महाराज का जो जो यंत्र बना हुआ है वो देख करके बड़े बड़े जो होते हैं ये बनाने वाले ज्वेलर्स वो खुश हो जाते हैं, वाह क्या चीज बनाई है जिसने बनाई है। हमारे भोले बाबा का जो अर्घा बनाया है उसको देख के ये हमारा ज्वेलर खुश, महाराज ये आसानी से नहीं बनेगा, जो बन गया सो बन गया। तो अगर हम उसी में अर्घा में भूल गए तो बनाने वाले को भूल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादातर लोग माया के चक्कर में आ जाते हैं, मायापति के चक्कर में नहीं रहते। इसलिए दुष्टराम, इससे तरना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक इससे ट्रांसेंड नहीं होंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर इसी में फंस गए, हमारे संत लोग उदाहरण देते हैं कि बद्रीनाथ जाना है, अब बद्रीनाथ गए और हरिद्वार में गंगा जी रहा है तो मस्त करे, वाह बड़ा मजा आएगा, यही अटक जाए, वाह 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 वाह। हरिद्वार में आनंद तो बहुत है गंगा नहाने का, अब भीड़ हो गई तब बात अलग है, हम लोग जब थे तब क्या मजा आता था हरिद्वार में नहाने में। थोड़ा ऊपर के ऋषिकेश का दृश्य देखे, वाह वाह वाह। देवप्रयाग में जहां मंदाकिनी और भागीरथी का संगम है, नहीं अलकनंदा का है, मंदाकिनी मिल जाती है उसमें आके, ऊपर तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का है और यहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम, क्या दिव्य दृश्य माय डियर, ऊपर से देखो तो आदमी समाधि लग जाए। तो अगर उसमें अटक गए वही, चलो अब तो यही मौज लेंगे क्या करना है, तो फिर बद्रीनाथ नहीं बना, मौज तो है वहां लेकिन बद्रीनाथ नहीं बना। तो इसी तरह ये माया बड़ी सुंदरी है, क्योंकि सर्वांग सुंदर भगवान की कृति है ना, ये जो सुंदर है, अब उसकी सुंदरता में भूल कर उसके जनक की सुंदरता को नहीं ध्यान कर पाए तो फंसे, और इसलिए इस माया की सुंदरता को एप्रिशिएट करते हुए क्या तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने ये जिसने तुझे बनाया, तू कितनी सुंदर है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो कितना सुंदर होगा जिसने तुमको बनाया है। तो माय डियर, जो उसी सौंदर्य में लटक गया तो फिर जिसने बनाया वो नहीं। तो आत्म दुष्टराम, दुष्टराम माने जिसको दुह माने कठिनता से, तराम माने पार करना, जिसको पार करना कठिन है ऐसी माया, किसके लिए, अकृतात्मा भी। ये जो अकतात्म है, जिन्होंने अपने आत्म कल्याण का साधन नहीं बनाया है, ऐसी जो स्थूल विषय में ही दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को अकतात्म कहा गया है। तो ऐसे अकतात्म लोगों के लिए दुष्टराम माने नपार करने जाने वाली माया तरंत अंजह स्थूल धियो, अंजह माने बड़ी सुविधा से, अंजसा माने बड़े आराम से, माने बड़े कंफर्टेबली कैसे पार हो जाएं। स्थूल धियो, स्थूल धियो माने जिनकी मोटी बुद्धि है। अच्छा अब बताओ, ये बुद्धि भी किसी की मोटी और पतली होती है? कोई अमुक बहन और कोई अमुक बहन, वो तरह नहीं है कि मैं नाम लेने वाला था, नाम नहीं लिया, मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगा सब लोग उदाहरण सामने। तो उस तरह कोई माया मोटी पतली नहीं होती है, उसी तरह बुद्धि भी मोटी, क्योंकि माया की कृत्य है ना बुद्धि, तो बुद्धि मोटी और पतली क्या होगी? बुद्धि तो सूक्ष्म होती ही है, तब इसको मोटी बुद्धि क्यों कहा? हमारी जैसे मोटी बुद्धि वाले, तो मोटी बुद्धि वाले माने जिनकी बुद्धि मोटे में लगी हुई, स्थूल में लगी, स्थूल माने मोटा, स्थूल काय तो मोटे, तो स्थूल माने जो सामने दिखाई पड़े दृष्ट पदार्थ, उसमें जिसकी बुद्धि लगी है उसको कहेंगे स्थूल दिया। स्थूल दिया माने जिनकी बुद्धि स्थूल में लगी हुई है। और वैसे भी माय डियर, बुद्धि अपने आप में तो कोई स्वरूप नहीं होता है, वृत्ति के अनुसार ही बुद्धि होती है। घटाकार बुद्धि हो गई, घटाकार वृत्ति तो बुद्धि घट वाली हो गई, और मठाकार हो गई तो मठ की आकृति की हो गई, अब और महलाकार हो गई तो महल के रूप में हो गई, अब वही बुद्धि एक महल के रूप में हो गई तो बड़ी स्थूल हो गई, और वही अणोरणियान के रूप में हो गई तो अत्यंत सूक्ष्म हो गई। तो स्थूल धिया माने जिनकी बुद्धि स्थूल में लगी हुई है, माने माया में लगी हुई है। दिखाई तो सब एक ही जैसा पड़ रहा है, अब किसी को केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है, किसी को पूरी चिड़िया दिख रही है, किसी को चिड़िया और पेड़ दिख रहे हैं, और किसी को चिड़िया पेड़ अगल बगल गुरु चेला गुरु भाई सब दिख रहे हैं। तो जिसको केवल चिड़िया की आंख दिख रही है वो सूक्ष्म बुद्धि, और जिसको जितना जितना पूरी चिड़िया देखी थोड़ी स्थूल, पेड़ दिख रहा और स्थूल, सब लोग दिख रहे हैं महास्थूल, बुद्धि तो वही है लेकिन बुद्धि स्थूल में लगी हुई है कि सूक्ष्म में लगी हुई है? तो ज्यादातर लोग स्थूल दिया घट पटादी में मान नौकर क्या कर रहा, हमारे महात्मा भी शरीर साधु कहते भूल गए उनका सर्टिफिकेट, स्कूटर घर मकान बंगला तंगला स्कूटर मोटरसाइकिल इत्यादि ऐसे एकदम धड़ से बोलते थे वो। तो इन चीजों में जिसकी बुद्धि लगी हुई है वो स्थूल धिया माने घर संसार में जिनकी बुद्धि लगी है स्थूल धिया माने वो। तो मोटी बुद्धि माने जिनकी मोटी वस्तुओं में स्थूल वस्तु बुद्धि लगी है, ऐसे स्थूल धी को हे महर्षि, एक महर्षि माने जो बड़े उदार हैं, ऋषियस्त मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने अपने लिए सत्य का अन्वेषण कर लिया है वो ऋषि, और जो अपना दर्शन किया हुआ सबको बांटते हैं उनको कहते महर्षि। आत्म कल्याण के साथ जगत के कल्याण के लिए भी जो लग गए उनका नाम महर्षि है। तो हे महर्षि, इसीलिए आपसे पूछे कहा महर्षि हमारे कल्याण का ठेका है आपका, इदम उच्यताम, कृपा करके आप ये बताओ। संक्षेप में अगर सुनना चाहो तो अब हे महर्षि, कृपा करके हमारे जैसे संसार में फंसे हुए लोग भगवान की इस माया से आसानी से कैसे पार हो जाए ये बता दो। नटसेल में केवल इतनी बात है, लेकिन बुद्धि में बैठाने के लिए थोड़ा सा वही नाटक। तो प्रबुद्ध उवाच, जो चौथे योगीश्वर हैं वो बोल रहे हैं। इनमें नाम भी बड़े अद्भुत अद्भुत हैं। अब प्रबुद्ध माने क्या है? जो नींद से जाग गया है उसका नाम जगा हुआ। ठीक से जग गया वो प्रबुद्ध, पूरी ठीक से जग गया। तो ये जो मोह निद्रा से उठा हुआ है, जो माया निद्रा से उठा हुआ है, वही तो प्रबुद्ध होगा, वही दूसरे को प्रबोधन कर सकता है। अब कभी कभी हमको जब इधर उधर कहीं जाना होता है तो हम जो हमारे इंटेलिजेंस कहते हैं भैया हमको इतने बजे जगा देना, तो हमको कौन जगा पाएगा? सोया हुआ आदमी हमको जगा पाएगा क्या? हमको जगाने के लिए आवश्यक है कि पहले स्वयं जगे, और जब स्वयं जग जाए तो हमको जगाए। स्वयं फंसा हुआ हमको फंसाएगा कि अपने साथ और ले जाएगा, जय श्री कृष्ण कर देगा। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कीचड़ में फंसना कितना कठिन काम है। हम फंसे हमको मालूम है, कई बार फंस गए। तो उस समय जो बचाने आता है वो पता नहीं बचा पाएगा कि नहीं बचा, अगर सावधान नहीं तो सबसे पहले वही जाता है। वो जितना जितना निकालो उतना उतना और धंसते चले जाते हैं। उसका उपाय है कि चुपचाप, सबसे बढ़िया उपाय सीख लो, कभी इस तरह फंसो तो हिलो डुलो मत ज्यादा, और जितनी जल्दी हो सके धीरे धीरे लेटने की कोशिश करो। लेटने की कोशिश करो तुम्हारा वेट कई जगह डिवाइड हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके सरक करके उस गड्ढे से निकल जाओ, फिर देखा जाएगा कैसे होता है। क्योंकि जहां कीचड़ होगा वहां फ्लूइड होगा ही थोड़ा सा, तो इसलिए फ्रिक्शन कम होता है। तो धीरे धीरे सरकते 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 इस तरह पार हो जाओ। दूसरे को बचाना हो तो खुद मत जाओ, कपड़ा फेंक दो, क्योंकि वो तुम्ही को पकड़ लेगा। उस जगह तो कपड़ा पकड़ लो और तुम दूर से उसको पकड़ के खींच लो। तो जो कीचड़ से बाहर है वो कीचड़ में फंसे हुए को निकाल लेगा आसानी से, और नहीं तो खुद ही कीचड़ में फंसा दूसरे को निकालने की कोशिश करेगा और दोनों के दोनों ही। ये तो बाहर से कपड़ा फेंक दो, बाहर से वाक्य फेंक दो, लेट जाओ, हाथ पैर मत चलाओ, ये बाहर से कपड़ा। उसे कहते तो कपड़ा पकड़ लो, हमारी वाणी पकड़ लो, पार हो जाओ कीचड़ से। रस्सी हम अपनी गाती देते हैं प्राय करके, लंबी सी लंबी है, फेंक देते हैं और फिर पकड़ के खींच लेते हैं। हमारे यहां एक कोई बैठे हुए हैं, उनके पतिदेव उसी तरह गंगा में जय श्री कृष्ण होने लग गए। अब हमने कपड़ा फेंका, एक बार पकड़ा फिर छोड़ दिया, फिर फेंका, तीसरी बार बड़ी मुश्किल से पकड़े तो उनको खींचे, वहां भी हिलने लग गए, लेकिन अब हम मजबूत खिचौड़ रहे थे तो खींच लिए तो बाहर आ गए। और वहां गए होते तो वो हमको लिए जा रहे थे, तो हमने बाहर से कपड़ा फेंका। तो प्रबुद्ध जो प्रकर्षेण बुद्ध, जो खुद बाहर निकला हुआ है, जो जागा हुआ है, वही बाहर निकाल सकता है, वही तुमको जगा सकता है। तो प्रबुद्ध माने जो माया की निद्रा से जगा हुआ है। तो माया की निद्रा से जगा हुआ अनुभवी महापुरुष तुमको माया से तरने का उपाय बता रहा है। कर्मण्यारभ्यमाणानां दुखात्ये सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनी चारिणां नृणां। मिथुनी चारिणां नृणां कर्मण्यारभ्यमाणानां दुखात्ये सुखाय च पाक विपर्यासम पश्येत। कर्मण्यारभमाना नाम माने कर्म के द्वारा जिनकी प्राप्ति होती है। तो यहां पर ये माया से पार होने के उपाय के लिए पहले वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो वर्णन है ना, ये तुमको वैराग्य, देखो एक चीज हम बताएं किसी चीज को तुम छुड़वाने की कोशिश करोगे तो वो चीज छूटेगी नहीं। उपाय ये है कि तुम उसकी गड़बड़ी बता दो कि ये इससे ये हानि होने वाली है, इसके ये गुण हैं, अब तुम अपने आप देख लो तुमको जो करना है। आकर्षक है वो सब है, लेकिन ये समझ लो कि इसका रिजल्ट ये होएगा। हमारे गुरु भाई थे, अब उनका शरीर नहीं, द्वारिका में ही जय श्री कृष्ण हो गए थे। तो यात्रा में जब हम गए थे, बड़े बढ़िया कुक थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन खीर अगर वो बना दें तो बड़े बड़े हलवाई उनकी जैसी खीर नहीं बना पाते थे। ये इस तरह की कहानियां इसलिए जानबूझ के बताई जाती हैं कि स्थूल को पकड़ना आसान है, सूक्ष्म को पकड़ना कठिन है। बड़ी बढ़िया खीर बनाते थे, इनके हाथ में क्या कला थी। किसी किसी को होता है, कुछ कुछ माताओं के हाथ में ऐसी कला होती है, वो छू भी दें तो बस उसका टेस्ट बदल जाता है। छूने से ना होता है, वो तो सब उसका कैलकुलेशन है, लेकिन कहा है, अरे भैया उन्होंने छू दिया तो समझो हो गया, छू दिया माने उन्होंने बना दिया। होता है, हमने देखा है, आप लोगों का अनुभव है सबका। तो उनकी बनाई हुई खीर अधौटा दूध में, पहले दूध को खूब पका ले, जब गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, 5 किलो का 2.5 किलो हो जाए, तब फिर उसमें 1 किलो चावल में केवल 1 छटाक चावल, 1 किलो दूध में, सॉरी 1 किलो दूध में 1 छटाक चावल और लगभग उतनी ही या उससे कुछ कम शक्कर, जितना कम मीठा हो उतनी बढ़िया मिठाई, और जितनी ज्यादा मीठी हो उतना कम। तो छटाक चावल और छटाक चीनी के हिसाब वाली खीर, और उसमें केसर भी पड़ी हुई है, हमारे यहां पड़ती है, केसर भी पड़ी हुई है और इलायची भी पिसी पड़ी दूर से, गाढ़ी गाढ़ी चकाचक दिख रही है, और किसी को डायबिटीज नहीं है, फर्स्ट क्लास भूख लगी है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि आजकल लोग हमको कटोरी में देते, चम्मच से भी बड़ी मुश्किल से कटोरी खाली की जाती है, और पहले कटोरी कटोरा में कौन किया, हम लोग थाली भी लेते थे सीधे, अरे कटोरा नहीं थाली में, इतना बड़ा डब्बू जिसमें कम से कम 450-500 ग्राम खीर आती होगी, गाड़ी गाड़ी 2 डब्बू डलवाई, और वो जब तक उधर परोसने गया तो दोबारा फिर आएगा, अगर थाली खाली नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी, तो वो जब तक लौट के आए तब तक खाली थाली खाली करनी है। अब उसको खाली करने को भाई ऐसे थोड़ा होगा चम्मच से, तो थाली मुंह में लगाई और सर फूट गए, फिर खीर राम तो थाली खाली रख के लाओ पधराओ, फिर पधराई। इस तरह हम लोग खाया पिया करते थे। अब वो भी एक समय, अब उस समय कभी कभी खीर नसीब होती तो रोज थोड़ा होती थी, रोज तो वही दाल का पानी और फुलका वही खा गया, तो कुछ कुछ कभी कभी मिला जब पेट में तरावट आ जाए, चिकनाई आ जाती, लुब्रिकेशन हो जाता, तो वो लुब्रिकेट करता खूब बढ़िया लुब्रिकेट कर, और हजम हो जाता था भाई डियर वो एकदम। तो विवेकानंद जी के हाथ की खीर थाली लिए हम लोग बैठे कि आ जाए, और तब तक कानाफूसी से पता चल गया कि खीर में काला सांप गिर गया था, ऊपर जा रहा था छिपकली के लिए, छिपकली तो पकड़ में नहीं आई, वो बेचारा वो सांप उसी में गिर गया खीर में। अब वो सांप निकाल दिया गया, अब उसमें खीर में है नहीं सांप। खीर राम खीर राम खीर राम, खीर खाओ भाई खीर खाओ, विवेका जी कोई लेगा, बढ़िया रूप है उसकी, खीर की आकृति बड़ी बढ़िया है, उसकी खुशबू बड़ी बढ़िया है, भूख भी चकाचक लगी है, लेकिन इतना होने पर भी खीर राम आग्रह करने, अरे 2 डब्बू तो ले लो यार कम से कम, कोई छुएगा। उसका गुण जान गए, इसलिए कहने पर भी खीर नहीं है। इसका नाम वैराग्य है। जबरदस्ती छुड़वा दी गई है डायबिटीज की तरह, भैया खीर तो अब उन्हीं के परिवार के जने हैं। वो रात को हम लोग उज्जैन के को मेला में थे, तो वो सज्जन बनाते भी बहुत बढ़िया थे, खिलाते बहुत बढ़िया, नाम नहीं लोग उनका स्वर्गीय है, इसलिए तो अब उनको मिठाई खाने का बराबर होता, डायबिटिक थे बड़े बढ़िया कुछ लोग उनका नाम समझ गए इसलिए हंस रहे। तो रात को उठे और हमारे कपूर साहब आते थे तो खड़बड़ खप, उसमें उस दिन बालूशाही बनी थी बड़ी बढ़िया, और रमन ने थी बालूशाही में एकदम माने रखता है, सभी दिव्य रहते लेकिन बालूशाही हुई, खीर हुई, मरतुई कढ़ी हुई, ये सब चीजें स्पेशल। तो खड़बड़ खड़ निकाले तो तीन बजे खड़बड़ खड़बड़ की आवाज हुई, तो पूछे क्या हुआ, वो देखा क्या हुआ भगवान दा, अरे तो अरे राम राम राम, अरे अरे चलो शांतम पापम शांतम पापम, थे बड़े अरे कोई चूहा गया उसको भगा, वो कौन सा चूहा था वो भगवान जाने, तो नाम निकल गया तो निकल गया, अच्छा हुआ कोई बात नहीं, कोई चोरी की बातें बड़े अच्छे थे, बड़े पवित्र आत्मा, बहुत खिलाने पिलाने के बड़े शौकीन, जो पुराने कहानी जानते हैं दूसरे को खिला के वही मोटे हो जाते थे। तो चोरी करके खाएगा, तो इसलिए पहले उसके रूप बता, ये खीर तो बहुत बढ़िया है विवेकानंद ने बनाई है, लेकिन इसका रिजल्ट ये है। तो संसार में देह में गेह में जिनका मन अटका हुआ है उनको वैराग्य हो जाए, वैराग्य माने विगता रागा ये शाम ते वैरागिना, विगता रागा विरागा, जो उसमें राग माने सटने का माने चिपकने का जो मन होता है वो छूट जाए, पता चल जाए कि इसमें जहर है, सांप है, जहर भी नहीं सांप गिरा निकाल दिया, अब तो है नहीं उसमें, लेकिन तो भी कितना आग्रह करो वो फिर उसकी तरफ मन नहीं करेगा, स्वप्न में भी मन नहीं करेगा। और अगर वैराग्य नहीं है तो स्वप्न की बात तो छोड़ो, जागृत में चोरी चोरी से वो चूहा हटाने के लिए रात को चला जाएगा। ये तो कैसे माया से तरने का उपाय, तो वैराग्य है, तो वही वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए कर्मण्य कर्मण्य कर्माणि आरभमाणा नाम दुखात्ते सुखाये च, जितने भी आरभ आरंभण है, आरंभण माने शुरुआत माने कर्म, ये सब हम काहे के लिए करते हैं, सब इसलिए कर्म करते हैं कि हमको दुख न होए हमको सुख होए, सुखम में भूयात दुखम में माहूत। धन काहे के लिए कमा रहे हैं, तो धन इसलिए कमा रहे हैं कि उससे बढ़िया 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 अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, मकान बनवाएंगे, समुद्र के किनारे कोई बढ़िया सा बंगलो बनवाएंगे, फ्लैट क्यों लेंगे, वाह सीधे बंगलो खरीद लेंगे, पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा बनवाएंगे, जैसे अमुक का है वैसे हम भी उससे बढ़िया बनवाएंगे, उसका क्या है उसका तो थोड़ा इतना ही इतना, हम उससे बढ़िया बनवाएंगे। ये इसलिए फिर उसमें बढ़िया सी वो भी लाएंगे, बढ़िया सी कार लाएंगे, वो शेख चिली वाली कथा है पूरी सुनाऊंगा तो नहीं, वो बेचारा वो सिर के ऊपर हड़िया लेके जा रहा था घी की, और वो प्रसिद्ध कथा इसलिए सब लोग अपने आप याद कर लो कि हड़िया ले जाएंगे तो उसको मजदूरी मिलेगी, मजदूरी से मुर्गी लेंगे, मुर्गी के अंडे बच्चे होंगे फिर और होंगे उनको बेचेंगे, तो ये करके 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 और फिर ब्याह करेंगे, फिर पत्नी आएगी जो हमको मनाने आएगी भोजन करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे अरे तूने मेरा घी नाश कर दिया, तेरा था घी का नाश हुआ, मेरा सारा सारा बंगला मोटरसाइकिल सब नाश हो गया। तो माय डियर धन कमाएंगे, धन कमा के ये करेंगे ये धन, देखो देखो एक चीज हम रोक करके ये बताना चाहते हैं, हमारे यहां शास्त्र दो तरह के लोगों के लिए हैं, एक जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं उनके लिए शास्त्र है और एक जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनके लिए शास्त्र है। तो इसलिए दूसरे मार्ग वाले इसमें कूदेंगे, इसमें कूदने वाले इसमें कूदेंगे तो काम बनेगा नहीं। हमारे यहां आखिर धन कमाने की भी बड़ी बड़ी विद्याएं बताई गई हैं। अरे माय डियर, उपासना है। चलो अब हम तुम लोगों को बता ही दें, आज कभी कभी बता देना चाहिए, क्या नुकसान है, जिसमें कि हमारा प्रमाण है इसलिए तुमको डाउट नहीं रहेगा। कल्याण में एक जगह हमारे गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई, उनका नाम था ब्रह्मर्षि जी, बड़े अच्छे ज्ञाता थे, भागवत के बड़े भारी पंडित थे। स्वामी अखंडा जी महाराज के पास एक साल तक रह करके उन्होंने पढ़ा था, बड़े पंडित थे और बहुत अच्छे सिद्ध, उनको मंत्र तंत्र बहुत आते थे। तो हम जब छोटे थे, हमसे बड़े गुरु भाई थे, बहुत बड़े थे, लेकिन हमसे प्रेम बहुत करते थे। तो उन्होंने हमको एक मंत्र बताया था, वो मंत्र तो हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, उचित भी नहीं है, लेकिन वो मंत्र बताया था हमको, इसका तुम जप करो। हम कहना कुछ चाहते थे, निकल गया था मेरे मुंह से, तो उन्होंने हमको वो मंत्र बताया। हमने कहा नहीं, हमारा मंत्र, कहा नहीं, अब तुम यही मंत्र लो, तुम्हारे लिए कहता, हमको बताया था। तो कल्याण के एक अंक में अगर आप लोग जानोगे तो पकड़ के ही पढ़ोगे तो आ जाएगा। एक सज्जन वकील थे, उन्होंने अपने मित्र से बताया कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि मैं उसका जप करूं तो अभी यही धन आ जाएगा। तो उनको यहां जंगल में यही आ जाएगा। तो उन्होंने जपा, तत्काल वहीं कहीं को आकर के उनको धन देने लग गया। तो उनको आश्चर्य हुआ, ये वही मंत्र था जो हमारे गुरु भाई ने हमको दिया था। हमारे मन में आया, यार एक बार मैं भी टेस्ट करके देख लो इसको। तो हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे, 70s की घटना है। उस समय हमारे आगे भी कोई नहीं था, पीछे भी कोई नहीं था, हमारे साथ वाले पीछे रह गए थे। हमारे मन में आया कि आज माता जी के दर्शन करने जा रहे, जा टेस्ट करके देखे, यहां तो कोई नहीं, देखूं कहां से रुपया आता है। अब बस जिंदगी में एक बार मैंने उस दिन किया है, बस केवल एक बार। तो हमने वो मंत्र जपना शुरू किया, थोड़ी देर किया, तब तक एक जने आके जबरदस्ती हमको रुपया देने लग गए, लो महाराज। और हमारे एक मित्र अभी हैं, वो सुंदरदास जी श्री महंत देवगांव के, वो तब तक आ गए थे और वो तमाशा देख रहे हैं। वो जबरदस्ती हमको धन दे रहा है और हम नहीं लेंगे तुमसे, क्योंकि हमको बहुत कष्ट हुआ कि हमने ये परीक्षा क्यों ली मंत्र की, तुमको परीक्षा नहीं देनी थी। अब इसके कारण हम कितने व्यथित हुए होंगे कि हम चाहे कितने शब्द करें तुमको समझ में आएगा नहीं। माने हम अत्यंत अत्यंत दुखी हुए, हमारे आंसू नहीं रुक रहे। वो जबरदस्ती जरा मैंने लिया नहीं, मुझे याद है शायद हमने लिया नहीं था, मुझे जहां तक ध्यान है, जबरदस्ती करता रहा मेरे पीछे। सुंदरता समाता देख रहे, इसको रुपया दे रहा, महात्मा को ले नहीं रहा। खैर वैसे भी हम जल्दी हर एक से लेते नहीं है, कोई ना कोई बहाना हमको बहुत बनाने आते हैं। बहाना बनाना धंधा सीखे तो हमारा गुजारा कैसे चले, बहुत चीजों के बहाने बताता हूं, क्योंकि वो पोल पट्टी बता दे रहा हूं अपनी। तो फिर हमको इतना कष्ट हुआ, हम वैष्णो माता की तरफ चले तो हमने कहा माता जी हमसे आंसू नहीं रुक रहे, मेरी इज्जत रखो, रास्ते में हमको अब और कोई न मिले, क्योंकि अगर मैं जब तक स्वस्थ न हो जाऊं तब तक कोई हमको मिले नहीं। ये हम इसलिए विस्तार से बता रहे हैं तुम्हारे काम आए। तो हम रास्ते में चलते थे, हमारे आंसू, बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत अधिक कष्ट, क्यों हमने किया, कैसे कर दिया। इतना वहां गए तो माता जी की कोई व्यवस्था रही होगी, यही भगवती की कृपा है। पूरा रास्ता खाली, हम अंदर गए तो गुफा भी खाली, उसमें गुफा थी, और सीधे माता जी के पास पहुंच गए। उनके पास जाके मैंने माफी मांगी, माता जी मैं बहुत दुखी हूं। और तब तक पुजारी और हमको रुपया देने लग गया, भेंट पूजा, आओ महाराज ऊपर बैठो। फिर और मैंने कहा तुमको यहां भी हमको तंग करने में लग गई, वो रुपया भी हमारा वो करवा रही हूं। तो पुजारी कह रही है माता जी का प्रसाद है, आप ले लो। तो जब अब मेरे आवाज तो निकली नहीं रही थी, मारे दुख के उसके इमोशन कारण आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं लेकर के बाहर आके थोड़ी देर तक, आधे घंटे तक बैठा रहा और फिर किसी तरह समाहित हुआ। तो फिर पीछे हमारे साथी लोग आए, तब तक मैं नॉर्मल हो गया था। मैं ये बात इसलिए बताई है कि हमारे यहां ये विद्या भी है, धन कैसे आ जाए। उस दिन तुमने देखा नहीं था मरे हुए चूहे से कैसे धन कमाया। ये तो ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए अलग प्रकार के शास्त्र हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, तो वो शास्त्र अलग है। ये श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, पारमहंस्याम संहितायाम, ये पारमहंसी संहिता है, विरक्तों के लिए है, इसलिए इसमें इसका वर्णन किसी दूसरी तरह से किया है। धन बुरा नहीं है, ये हम सच कहते हैं, धन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धन का उपयोग कैसे करते हो इसके ऊपर। जिसकी रुचि धन को कमाने में है तो उसको कमाने दो, न बुद्धिभेदम जनए, उसको लगाओ हाँ और कमाओ। अरे धीरे धीरे अपने आप कमा करके फिर छोड़ेगा ही, अंत में तो उसमें कोई सुख मिलने वाला है नहीं। तो उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग, श्रेय और प्रेय दो मार्ग सुने हैं ना, वही एक श्रेय का मार्ग एक प्रेय का मार्ग है। तो ये श्रेय के मार्ग से कोई जाने वाला है कि प्रेय के मार्ग से कोई जाने वाला है, महापुरुष को या गुरु के को उसी की तरह उपदेश देना चाहिए। किसी को किडनी का एलिमेंट है तो उसका भोजन अलग तरह से, और किसी को भस्मी का रोग है तो उसका भोजन अलग प्रकार से। तो ये परमहंसों की संहिता है, विरक्तों के लिए ये लिखा गया विशेष करके। इसलिए कर्मण्यारभमाणा नाम दुख हत्ये सुखाय च, ये इस प्रकार से वैराग्य किस प्रकार उत्पन्न हो ये वर्णन करने के लिए नारद जी वसुदेव जी को और श्री प्रबुद्ध श्री जनक जी को माया के तरने का उपाय बता रहे हैं। तो ये विरक्तों के लिए है, कृपा करके इसका उल्टा सुल्टा अर्थ मत लगा लेना। प्रवृत्ति मार्गों के लिए अलग है और विरक्त मार्ग वालों का अलग मार्ग है, उनका जो उपाय है उसकी हम लोग फिर भगवत कृपा से कल चर्चा करेंगे। श्री रमण बिहारी लाल की जय।